Hare Krishna, so we have a great pleasure to have a Shlok Skand Sad and Dhyay Panch, Shlok Sankhya Satra, Hare Krishna Bodhi Vyas Kiri, Daitaya, Chandan Vane, Jata, Ayam, Kanta Katuma, Yat, Mula, Mula, Parasho, Vishnu, Daitya Chandan Vane Jata Ayam Kantaka Truma Yanmulon Mulparsho Vishnar Nalitor Bhaka Daitya Chandan Vane Jata Ayam Kantaka Truma
साधना भक्ति में उनके जीवन में कई प्रकार की अड़चनें आती हैं
और नरसिंह भगवान को बताया गया भक्ति योग विनाशक, कि वो अपने भक्तों की भक्ति के पथ पर आने वाले सभी का क्या करते हैं, नाश करते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज असुर कुल में पैदा होने के बाद भी भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, और जब उनके ऊपर उनके पिताजी ने कई प्रकार के जो है यातनाएं देने की कोशिश करी और उनको विष्णु भक्त की जगह हिरण्यकश्यप भक्त बनाना चाहा और उसकी भक्ति में कई प्रकार के अवरोध पैदा किए, उनको मारने तक का प्रयास किया, तो भगवान विष्णु ने जो है हिरण्यकश्यप का अवतार लेकर अपने भक्ति रक्षा करी। तो इस तरह जब जब जहाँ जहाँ पर जिन जिन कथाओं में हम देखते कि भगवान स्वयं आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो इस प्रकार की कथाएं भक्तों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं, उनके लिए एक हृदय को उनके एक ऐसी शक्ति प्रदान करती हैं जिससे कि वो अपनी भक्ति के कार्य में आगे बढ़ते रहे। जिस प्रकार प्रहलाद की रक्षा करी, उसी प्रकार भगवान ने गजेंद्र की भी रक्षा करी, जो काफी लंबे समय तक एक ग्रह से एक मगरमच्छ से लड़ता रहा और मगरमच्छ की शक्ति पानी में जाकर डबल हो जाती है, बहुत अच्छी, और उसमें गजेंद्र जो है अपने को बचाने का प्रयास करता रहा अपनी शक्ति के आधार पर। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान उसी समय तुरंत गरुड़ पर बैठकर यहाँ तक गरुड़ को कहते हैं छोड़ दिया और अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा करी, क्योंकि उन्होंने तुरंत पिछले याददाश्त के आधार पर स्तुतियाँ करी भगवान की, तो एकदम रक्षा करी। और ये सब हिस्ट्री बुक्स में पुराणों में इन कथाओं का वर्णन मिलता है। और इसी तरह हम देखते हैं द्रौपदी जो है भरी सभा में जब उसको लज्जित किया जा रहा था और उसके वस्त्र उतारे जा रहे थे, उस समय भी उसने काफी प्रयास किया, लेकिन अंत में उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान की तरफ पूरी तरह से समर्पित हुई, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उसी समय जो है लंबी साड़ी जो है प्रदान करी ताकि उनकी रक्षा हो सके। तो इस प्रकार ये ग्रंथ इस प्रकार के इतिहास से, इस प्रकार की सच्ची घटनाओं से भरे हुए हैं। कई बार भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस प्रकार के कार्य कर देते हैं कि साधारण लोग इस सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। सुनने में आता है कि विदेशों में तो एक जगह किसी व्यक्ति ने हमारे भक्तों पर हमारे संस्था पर इसलिए केस कर दिया, कहती थी ये लोग ऐसे लोगों की पूजा करते हैं, ऐसे भगवानों की पूजा करते हैं जो आधे मनुष्य हैं और आधे शेर हैं। अब नरसिंह भगवान जिस तरह का रूप लेकर आया उसको पूरी कथा थोड़ी पता है, क्योंकि वचन में बैठे हैं आप लोगों की तरह कि क्या कारण था, क्यों हुए ऐसे, हिरण्यकश्यप ने कितने समय तक 36,500 साल तक तपस्या करी तब जाके ब्रह्मा जी ने वर दिया कि मैं ऐसे ना बोलूं, वैसे ना बोलूं, अंदर ना बोलूं, बाहर ना बोलूं, ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दी भगवान के लिए, है ना, और फिर पूरे समाज को जिसमें हम रहते हैं इसमें इतनी उथल पुथल मचाई। अगर किसी के पास ऐसी शक्ति मिल जाए किसी को, जैसे अगर कोई व्यक्ति थोड़ा साधक हो, योग तपस्या करके कुछ साधना प्राप्त कर लेता है, तो सबसे पहले उस साधना का प्रदर्शन कर कर वो अपने फायदे के काम करता है। तो हिरण्यकश्यपु ने भी कहा कि अब तो मेरे पास सारी शक्ति है, तो ये जो बेचारे देवता लोग हैं मेरा कुछ नहीं कर सकते, तो पूरे तीनों लोगों में जो है उनका प्रभाव बढ़ गया है। और उन्होंने कहा जो सारी शक्ति मुझ में है और मैं मर नहीं सकता, ऐसी गारंटी है मेरे पास ब्रह्मा जी के द्वारा। ये बात अलग है कि ब्रह्मा जी ने कहा मेरे भी 100 साल है और मुझे भी मरना पड़ता है, इसलिए मैं अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता। तो उन्होंने फिर कान ऐसे ना पकड़ के वैसे पकड़ने की कोशिश करी और उनको कन्विंस कर ली, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु भी कह दिया, है ना जी। और अब हम देखते हैं कि भगवान को इस प्रकार का रूप धारण कर कर आना पड़ा जिसमें कि वो आधे शेर ना तो पूरे शेर कहलाए और आधे मनुष्य ना कि पूरे मनुष्य कहलाए। 84 लाख योनियों में ये योनि नहीं आती। और जिस तरह अस्त्र शस्त्र की बात करी, जिस तरह समय की बात करी, जिस प्रकार अंदर बाहर की बात करी, हर प्रकार का जो उन्होंने वरदान मांगा था उन सारे वरदानों को पूरा करते हुए भगवान कृष्ण ने जो है ऐसा नरसिंह विभत्स रूप का बनाया और हिरण्यकश्यप को पोस्टमार्टम कर डाला। लेकिन उन कोर्ट्स में कौन समझाए उन जजेस को या उन लोगों को, है ना, उनको तो लगता है कि कैसे भगवान है इतने खतरनाक, है ना, डरते हैं जी, तो इन इनको कैसे करना, तो फिर बताना पड़ा उनको, फिर तो छुपे लिए बन जाते, सब समझ जाते हैं। क्योंकि हमारी फिलोसफी कोई भी अगर कोई क्या कहते हैं उसको छेड़छाड़ करेगा, तो छेड़छाड़ करने से पहले उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना, और पढ़ते समय फिर वो अपने आप जो भी सारे उत्तर मिल जाते हैं तो कन्विंस भी हो जाएगा। आज समाज में कई ऐसे प्रवक्ता हैं, कई अन्य पंथों के, अन्य धर्मों के, जिन लोगों ने अपने धर्म को या जिस पंथ को फॉलो कर रहे हैं उस पंथ को ठीक ठहराने के लिए, उसको अच्छा ठहराने के लिए या अपने को सुपीरियर बताने के लिए, उन्होंने दूसरे ग्रंथों पर भी पढ़ना शुरू कर फॉलो करते हैं। तो जब वो दूसरे ग्रंथों को हमारे ग्रंथों को पढ़ते हैं और वो देखते हैं कि उनकी पुस्तकों में जो चीज़ लिखी है वो यहाँ नहीं लिखी है, हमारे ग्रंथों में उन सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते जो हम पूछते हैं या हमारे मन में रह जाते हैं, लेकिन वो इन ग्रंथों में पूरे मिलते हैं, हर चीज़ का लॉजिक है। तो कहीं ना कहीं अगर क्योंकि वो जिस धर्म से जुड़े हैं, जिस परंपरा से आए हैं, बचपन से जो चीज़ सिखाई गई है और बड़ा मान सम्मान मिलने लगा है, अब उनकी पोजिशन हो गई उस धर्म में, तो अब उस धर्म को छोड़ भी नहीं सकते, है कि नहीं? अगर उस व्यक्ति ने धर्म को छोड़ दिया तो अकेला थोड़ी धर्म परिवर्तन करेगा, वो तो कम से कम लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन कर डालेगा। तो अपनी पूजा प्रतिष्ठा लाभ, अपनी पोस्ट को बचाए रखने के लिए, अपने को मिलने वाले सम्मान को बचाए रखने के लिए ऐसा व्यक्ति हमारे ग्रंथों को पढ़कर अपने धर्म को अच्छा करने के लिए उन्हीं शास्त्रों से उन चीज़ों को कोट करता है, वो निकालता है जिससे कि वो अपने मत को या अपने धर्म को बड़ा बता सके या सही बता सके। आप सुनते भी होंगे, जानते भी होंगे समाज में इस तरह के कई लोग हैं। तो इस प्रकार का वो जो लोग रखते हैं, लेकिन हाँ वो ये कभी नहीं बोलेंगे आपको कि आप भी पढ़ो, क्योंकि उसको मालूम है अगर आपने पढ़ लिया तो आप उधर चले जाओगे। इसलिए वो लोग भी इंस्टीट्यूट खोलते हैं, वो लोग भी अपने शागिर्दों को, अपने धर्म के धर्मावलंबी लोगों को पढ़ाते हैं, वो लोग भी इंस्टीट्यूट खोलते हैं ताकि उनका मजहब आगे बढ़ सके। तो वो सब कोड निकाल लेते हैं जो कि उनके धर्म को या उनके मत को हेल्प करता है, और सुबह दोपहर शाम को रटाते हैं ये पढ़ो, बस इतने श्लोक याद करो, उससे ज़्यादा नहीं, 18-1, 19-1, दिस एंड दैट, उसके बाद ऊपर वाला नहीं, उसके नीचे वाला नहीं। क्योंकि अगर तुमने वो पढ़ लिया तो फिर एक और पढ़ लेता हूँ, उसका एक और पढ़ लेता हूँ, और फिर पता चला शिखा बनाकर धोती कुर्ता पहनकर तुम तो भैया फुल टाइम हो, तुम तो मंदिर चले गए। तो इस प्रकार जो है जितने लोग हैं इस प्रकार के, जितने भी धर्म का इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, वो सब जानते हैं सही क्या गलत है, लेकिन बंधे हुए हैं किससे? पूजा लाभ प्रतिष्ठा से, उस बोझ से, उस मिलने वाले सम्मान से, उस जिम्मेवारी से। तो जैसे किसी चोर पे रखवाली में लगा दो तो फंस जाता बेचारा, चोरी कर सकता है और सारे तरीके जानता है वो, चोर आएगा तो क्या क्या कर सकता है, तो बहुत अच्छे ढंग से क्या होता है। तो उसके साथ भी ऐसे ही है, वो बेचारे को बना दिया तुमने कि भैया तुम रोनोगे ये बनो, फिर उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, और समझ कर समझ जाता है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। फिर हमने देखा कि ऐसे लोग जो पढ़ लेते हैं और उनको पता है कि हम लोग धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे अपने यहाँ रहते हुए, तो गायब हो जाते हैं, देश बदल लेते हैं या अपना मकान बदल लेते हैं, और ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कोई उनको जानता नहीं है, एक नए नाम से, एक नए परिवार में नई जिंदगी शुरू करते हैं, कृष्ण भावना वाले बोलो हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार जहाँ जहाँ भक्तों को विघ्न आते हैं, दिक्कत आती है, तो भगवान जो है इस प्रकार अवतार ले रहे हैं। आज के श्लोक में हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यप जी ने अपने बेटे छोटे बच्चे को, 5 साल का बच्चा, तो उसको स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए शनिवार स्कूल में, और वहाँ पर पढ़ने के बाद जब वो समर वेकेशन में घर आया तो पिता ने पूछा कि क्या अच्छा लगा तुम्हें, क्या बढ़िया लगा पढ़ाई में, कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगा? क्योंकि वो तो हिरण्यकश्यप था, वो चाहता था कि इतना बड़ा साम्राज्य मेरा सारे देवता में से डरते हैं, तो मेरा बेटा भी ऐसा बने कुछ जो पता चाहते थे, तो इसलिए उसको ज्ञान और संसार की नॉलेज देना चाहते थे। तो उसमें खुशी का किसी न किसी का कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता है, अच्छा मार्क्स लगा था, तो उन्होंने पूछा तुम्हारा कौन सा फेवरेट है, तो वो उन्होंने क्योंकि बचपन में माता के गर्भ में सब कुछ सुन लिया था और टीचिंग ऐसे अंदर घुस गई थी, तो उसी में से कुछ उन्होंने सुना दिया जो नारद जी से सुना था। तो वो हैरान हो गए कि ये क्या है। तो उन्होंने बेटे पूछने कहा, उन टीचर्स को बुलाया तो कहा कि तुम खबरदार कि देखो ये तुम्हारे स्कूल में कोई आकर गलत शिक्षा दे रहे हैं, उनको दोबारा से समझाओ ढंग से। तो अब वो लोग जो हैं बच्चे को वापस लाए शंकर अमरख, और इन बच्चों को अब सारे प्रहलाद को जो है डांटने लगे, तो पटने लगे, तो कहने लगे ये मानते तो है। तो उन्होंने बोला अरे छड़ी तो लाओ, मतलब पिटाई करने टरने के लिए, जैसे बता रहे हैं इसमें कि नीति के ना चार स्तंभ होते राजनीति के, साम दाम दंड भेद। तो समझाया पूछाया सब कुछ करा तो नहीं माना, तो कहते लाओ मेरी छड़ी लाओ, डरा रहे उसको। यह प्रहलाद हम लोगों के नाम और यश में बट्टा लगाया है, मतलब फेमस स्कूलर मतलब आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो इतनी फेल हुआ हो या उनके प्रभाव से निकल गया। ठीक है, जैसे आज के हमारे स्कूल हैं तो सारे के साथ जिन स्कूल्स में बच्चों को डालते हैं तो हमारा और स्कूल के टीचर्स का ये रहता है कि हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। नामी ग्रामीण स्कूल हो, अब जानते हो इनका स्कूल लाइक डी पी एस है, इस टाइप के जो स्कूल हैं वो चाहेंगे कि हमारा जो है खराब ना हो जो रिकॉर्ड है, तो बहुत प्रयास करते हैं अच्छा बच्चा बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए कुछ। तो यहाँ पर उनके स्कूल के भी जो है कह रहे हैं कि हमारी भी जो है साख गिर जाएगी, है ना, अपनी दुर्बुद्धि के कारण यह असुरों के कुल में अंगार बन गया है। असुरों के कुल में अंगार का मतलब क्या हुआ कि वो एक ऐसा दैदीप्यमान ज्ञान से चमक रहा है इस समय प्रहलाद, है ना। तो वो कह रहे हैं अंगार बन गया, ये हमको जलाएगा, ये हमारे पूरे कुल को जलाएगा। इसलिए आज भी वो यही बात कह रहे हैं कि धूर्त प्रहलाद जो है चंदन के वन में कटीले वृक्ष के समान पैदा हो गया, और इस साम्राज्य को, असुरों के साम्राज्य को हमारे इस पूरे कुल का ये नाम खराब करेगा, है कि नहीं। मतलब अच्छा वैसे दृष्टि से देखे तो अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है, भक्ति कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो क्या करिए हमारे नाम कटवाएगा। ये ना हमारे कुल में पैदा कैसे हुआ है, ग्रहण ढंग के लिए अंगार के रूप में चला देगा हमारे पूरे कुल को, और इस प्रकार के बतवाएं दे रहे हैं उनको। और कह रहे हैं कि ये जो इसमें ये पूरे चंदन के वृक्ष को काटेगा कैसे, और जो कुल्हाड़ी बताई है उसमें, तो उसमें बताया कि काटने वाली चीज है वो विष्णु है, और भगवान भी कहते हैं क्योंकि अकेले नहीं करेंगे ये सब काम, तो उनको हत्ता चाहिए, कुल्हाड़ी हत्ते के साथ होती है ना, अकेले लोहे के पीस से कैसे काटोगे, तो उसमें हत्ता चाहिए। और फिर उसकी मदद से जो है उस असुरों के साम्राज्य में जहाँ हर भी असुर है, तो उनकी असुरता को खत्म करने के लिए, उनके कुल को खत्म करने के लिए विष्णु प्रहलाद को इसी कुल में से, इन्हीं कुल का बच्चा लेके बताइए, और उससे इस पूरे असुर कुल को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अब क्या करेंगे, भगवान विष्णु दैत्यवंश रूपी चंदन वन को काट गिराने के लिए कुल्हाड़ी के टुकड़े हैं, और ये प्रहलाद कुल्हाड़ी का हत्ता बन गया है। प्रभुपाद जी भी प्रकट में लिख रहे हैं कि अकेला कुल्हाड़ा कटीले वृक्ष को नहीं काट सकता, उस कटीले वृक्ष को विष्णु भक्ति रूपी कुल्हाड़े से खंड खंड किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु अपने प्रसंग में बताते हैं कि उनको जो है इस कृष्ण प्रेम को बांटना है, लेकिन उनके पास केवल दो हाथ है, तो वो भी असहाय महसूस कर रहे हैं, और क्या चाहते हैं कि मुझे और हाथों की आवश्यकता है, और हाथों की आवश्यकता है, इसलिए ताकि इस असुर साम्राज्य में, अभी भी असुर है, ऐसा नहीं कि हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप अभी भी है, जैसे जब भगवान कृष्ण के पुत्र और पोते इत्यादि जाने उन्होंने एक बार ड्रामा किया था, एक बेटे ने जो है पेन कुछ दिखाया ऋषि के पास, गया बताओ क्या है इसमें, उसने कहा कि जो भी इसमें लोहे का कुछ इकट्ठा करके तो जो भी इसमें कुछ है उसी से तुम्हारा पूरे कुल का नाश हो जाएगा। तो डर गए वो, उन्होंने उसको उठाया, उसको काटा, तोड़ा, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, समुद्र में फेंक दिया, और बाद में वही समुद्र के पानी से एक और नर में कहीं इकट्ठा हो गया, वहां पर वो झाड़ियां और सब कुछ हो गया। ठीक है, तो उसी तरह हिरण्यकश्यप का वध तो हुआ बोल सकते हैं, लेकिन उस तरह की मेंटालिटी, उस तरह की चेतना का विस्तार हो गया समाज में, धर्म इतना, अधर्म इतना बढ़ गया कि आज वो छोटे छोटे कण के रूप में हिरण्यकश्यप आज हर व्यक्ति के अंदर उपस्थित है। वो अधर्म कलयुग की मदद से आज हर व्यक्ति के हृदय में उपस्थित है। वो एक ऐसी मेंटालिटी, एक ऐसी चेतना बन गई है जो कॉन्शियसनेस वैसी रखती है हमारी जैसे कि हिरण्यकश्यप की थी। एक तो हर कोई बल रूप शक्ति के पीछे भाग रहा है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सबसे धनी बनूं, सबसे बुद्धिमान कहलाऊं, सबसे ज्यादा ज्ञान मेरे पास हो, सबसे ज्यादा सुंदरता मेरे पास हो। यही हिरण्यकश्यप को चाहता था, उसने लेकर भी दिखाया और हम भी प्रयास कर रहे हैं। जोन जोन से कॉलेजेस में जिन जिन प्रतिष्ठानों में इस तरह की डिग्रीज मिलती है, हम पढ़े पीछे उसकी है कि नहीं। और फिर ये करने से क्या होगा, लॉडिंग हो कि जब मेरे पास एक पोजीशन हो जाएगी तो मैं उसका भोग कर सकूंगा, दूसरों के ऊपर राज्य साम्राज्य अपना चला सकूंगा। इस प्रकार की मेंटालिटी, भोग की मेंटालिटी। और फिर जब मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा तो फिर मैं जो चाहूंगा करूंगा, जैसे यहां तक कि यूं कहें कि जिसके पास भी इस प्रकार के अवगुण, जैसे हम अवगुण बोल रहे हैं यहाँ के लिए तो गुण ही हो, यहाँ के लिए तो क्वालिटीज कही जाती है समाज के लिए, तो इस प्रकार की चीजें जो कि एक ऐसी पवित्र आत्मा जो कि आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक संसार में जो कि हमेशा पवित्र रहती है, लेकिन उस मेंटालिटी की वजह से वापिस नहीं जा पा रहे हैं। बार बार 84 लाख योनियों में उसको केवल इसी मेंटालिटी की वजह से जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु के इस कष्टों से संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जिस प्रकार किसी व्यक्ति का उद्देश्य है अगर किसी अपने डेस्टिनेशन में जाना यहां से, तो वो बीच में आने वाले और किसी भी व्यवधान को या किसी भी तरह के और किसी काम को नहीं करता, समय उसको वहीं जाना है। उसी तरह जब ये दिवंगत आत्मा ये पवित्र आत्मा दिवंगत होने से पहले क्या है ना, क्रिया के लेक्चर बोल देता हूं तो कई बार शब्द इस तरह भी हो जाते हैं, बात ये करनी होती है सारी आत्माएं जो है एक तो दिवंगत होंगी, इसलिए कई बार हम पूछ देते हैं भगवान को प्यारे कितना होना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो, कोई हाथ नहीं खड़ा करता ऐसे लेक्चर में, और सबको बनना ही है, हमारे तो उद्देश्य भगवान के प्यारे हो ना, कितने लोग चाहते भगवान के प्यारे, भगवान को प्यारे होना इशारा किया कि मैं थोड़ा सा फर्क है खाने चिकन लेते हैं। हम सबका उद्देश्य मूवमेंट इसीलिए खुला था कि हम भगवान को प्यारे हो सके। ये ऐसे कर्म कीजिए, ऐसी सेवा कीजिए जिससे कि भगवान आपको देखे, है ना। भगवान के प्यारे होने के लिए हम लोगों को भी मेहनत करनी पड़ती है। डरते लोग भगवान के प्यारे ऐसे कैसे बोल रहे हो, हम तो लेना चाहते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि सारे भगवान को प्यारे हो जाए। ये लोग एक बार दिवाली पे हम लोगों ने मैंने बताया था लोगों को, बता रहा हूँ आज, मैंने आज तक बताया नहीं था, उसमें लिखा था कि ये दिवाली में आपका दीवाना हो जाए, आप कहीं के ना रहो, आपके घर में पेंशन इधर जाके आप परेशान हो जाओ और आपको कुछ ना मिले, आप फ्रस्ट्रेटेड होकर भगवान के चरणों को प्राप्त करो और शुभ भक्ति करके आध्यात्मिक जगत में। तो लोगों को लग रही तो श्राप है, लेकिन श्राप के साथ साथ बात, क्योंकि संसार के लिए तो ये सब कहते हैं ना, दो नाव को तो फलो, है ना, झुक झुक जियो। तो ये कई बार अगर तो व्यक्ति ठीक नहीं है, चेतना खराब है, पाप करता सुबह शाम, संस्कार नहीं है, तो उसके लिए दो नाव तो फलो लंबी उम्र होना, तो उसके लिए तो क्या है, श्राप है। दिन 15 पाप करता था लंबी उम्र के साथ, अब 100 साल में तो उसने इतने कर दिए, कुछ नहीं, है ना। तो जब भौतिक कल्पना, भौतिक चेतना, भौतिक भोग की मेंटालिटी खत्म नहीं होगी, है ना। लोग माता पिता बच्चों को देते हैं आशीर्वाद इसी तरह के देते हैं, तो उसमें लोगों को ये लगता है कि जो इस संसार का जो सबसे अच्छा सुख है कि हमारा बेटा हमारा बच्चा जो खूब धनी बने, खूब सुंदर हो, है ना, और सब कुछ करे, इसको सब कुछ मिले, तो इस प्रकार के वरदान देते हैं। लेकिन जबकि ये वरदान या इस प्रकार का जो भोग की विषय वस्तु है उसके लिए क्या है, वो अभिशाप का काम करते हैं। यहाँ पर एक घर में एक अच्छा बच्चा पैदा हो गया, पूरे का पूरा साम्राज्य चिंतित है, स्कूल के टीचर परेशान हुए, पिता परेशान हुए, संकट में समय की क्या आ गया हमारे घर में, क्यों? क्योंकि ये जो है ये विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा परम दुश्मन है जिसने मेरे भाई को मारा। तो इस प्रकार की संसार में होने वाली जितनी प्रकार की इस प्रकार की क्रियाएं हैं मानसिक और शारीरिक, जो हम लोगों को यहाँ बंधन का कारण बनती है, या जिन चीजों को करने से हमारे यहाँ राग द्वेष काम क्रोध लोभ जो बढ़ जाता है, वो सारी की सारी हमारे चेतना को दूषित करने वाली, और इन सब दूषणों से व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए कहते हैं कम जीवन हो लेकिन कृष्ण भावना भावी जीवन हो तो इसकी प्रार्थना करनी चाहिए, लंबा जीवन हो तो भी कृष्ण भावना भावित हो इसकी प्रार्थना करनी चाहिए, लंबा जीवन हो लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं है तो ऐसे लंबी आयु से तो छोटी आयु बेहतर है। जैसे एक एग्जांपल देते थे साधु का, एक व्यक्ति जब चार लोगों से मिलता है, किसको याद है? एक ब्रह्मचारी से मिलता है, एक सन्यासी से मिलता है, एक राजा से मिलता है, तो जब एक कसाई से मिलता है तो पहले मिलता है राजा से, किसी से मिले पहले राजा से मिलता है, तो राजा को देखते तो बहुत भूखिला सी है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, तुम जीवित रहो कि मैं तुम अभी भी आनंद कर रहे हो और मर रहे हो। और जो कसाई था उसको कहते हैं तेरा जीना मरना एक ही बराबर है, तू अभी भी काट रहा है, तेरा जीवन इतना खतरनाक है, मरने के बाद तुम्हें नहीं जाना ये सब करते। और सन्यासी को बोलते हैं कि तुम अभी मर जाओ, तो नहीं नहीं अभी नहीं मरते, ब्रह्मचारी जो होता है उसको बोलते तुम अभी मर जाओ, कहते तुम्हारी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है, तुम मरोगे तो धर्मी जगह में बात करोगे, बाद में तुम्हारी नाका मच जाओगे। और सन्यासी को जो बोलते हैं कि तुम मरो या जियो क्योंकि तुम अभी भी पूरी तरह से निकलते हो संसार से, और शरीर त्याग के बाद तुम्हें धर्मी जगत मिले ही नहीं। तो इस संसार में हम देखते हैं कि इस प्रकार की लंबी आयु की कामना करना और उन सब कार्यों में खूब संघर्ष करना, खूब मेहनत करना, जो कि हम लोगों की चेतना को दूषित करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। हमको लग सकता फायदा हमारी चेतना के हिसाब से, हमारी मेंटालिटी के हिसाब से हमें लग सकता है कि बहुत अच्छा करता व्यक्ति, लेकिन वास्तव में शास्त्र दृष्टि से, शास्त्र चक्षु से देखें तो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, उसका तो नुकसान होने वाला है कि नहीं? क्योंकि उसकी उसको संस्कार नहीं, उसको शास्त्र ज्ञान नहीं, उसका शास्त्र चक्षु ठीक नहीं है, तो वो गलत को सही मानता है और सही को गलत मानता है। इसलिए हम लोग भी अपने परिवारों में, या हम लोग जो छोटे थे यहाँ पर, तो संतान के ऊपर जैसे यहाँ पर एक प्रहलाद बनकर आ गया घर पर, तो यह पूरे के पूरे कुल को, जब हिरण्यकशिपु का वध कर देंगे भगवान नरसिंह देव, तो कहेंगे मांगो क्या चाहिए, तो अंत में बोलते ठीक है मेरे पिताजी को जो है माफ कर देना है, आज चरणों में जगह देना। कहते कि नहीं, उन्होंने कहा जिस कुल में प्रहलाद महाराज जी आपके जैसा भक्त पैदा हो जाएगा उस परिवार की 21 पीढ़ियां भगवान को प्राप्त करती है। अरे एक व्यक्ति का भगवान के धाम जाना, कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंत, बहुत बहुत जन्मों के बाद कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, मनुष्य नाम सहस्त्रेशु हजारों में कोई एक, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जी, इस पूरे ब्रह्मांड को भ्रमित करते हुए कोई भाग्यवान जीव होता है जिसे कृष्ण की कृपा से गुरु और गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं, जिसको सही में ये मालूम पड़ता है कि मैं कौन हूँ भगवान कौन है, तो ऐसा शुभ भक्त जी भगवान के धाम जाता है। लोग यज्ञ कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, है ना, नाना प्रकार की साधनाएं तपस्याएं करते हैं, क्या इसलिए कि हम मुक्त हो सकें संसार से। लेकिन एक अगर अच्छा भक्त बन जाए जो भक्ति योग का पालन करता है, उसके कुल की 21 पीढ़ियां, चाहे वो उससे पहले किसी और योनि में ना रही हो, 84 लाख योनि में कहीं ना कहीं भटक रही हूँ, इधर लोग में कहीं ना कहीं इसी संसार में, चाहे स्वर्ग में हो चाहे कहीं भी हो, क्योंकि सब भौतिक जगत के अंदर है, तो कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी योनि में हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के कृष्ण भक्त बनने की वजह से देखिए 21 पीढ़ियों का जो है जहां पर भी वहां से भवंत धाम, उस धाम में जहां पर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं, केवल आनंद है, कृष्ण की सेवा है, उस धाम में एंटर करते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के हैं, इसलिए हम लोग छोटे छोटे उद्देश्य बनाते हैं, रोटी कब मिलेगी, कब तक मिलेगी, इस जीवन का क्या होगा, कपड़े कब तक रहेंगे, मकान कैसा है, इतनी इतनी चीजों का सीमित रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इस जीवन के विषय में नहीं, वो अपने आने वाले जीवन के विषय में सोचता है। वो कहता है अगर मुझे इस जीवन में इतना संघर्ष करके ये सब इकट्ठा करना पड़ रहा है, और सुनने में आता है शास्त्र के हिसाब से कि 84 लाख योनि में जाना पड़ता है, और बार बार जाने का मतलब ये नहीं कि एक बार चक्कर मारा तो फिर खत्म हो गया, नहीं, तब तक जाना पड़ेगा योनियों में, तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक कि मेरे को मुक्ति न प्राप्त हो जाए, जब तक कि मैं भगवान के चरण कमलों में प्रेम अर्पित अपना अर्जित न कर लूं। तो फिर ऐसा व्यक्ति भक्तों के सामने आकर अपने जीवन के लक्ष्य को फिर से बैठता है, फिर से सोचता है कि क्या करना है। तो जब इस प्रकार के अगर संतान हो जाए, चाणक्य पंडित जी कहते थे कि जिस प्रकार कहते हैं कि वरम एको गुणी पुत्रो नाचा मूर्खे शते अपि एकश्च चंद्र तमो उन्नति नाचा तारकणे, कि संतान अगर घर में है तो बहुत अधिक संतान करने का कोई उद्देश्य नहीं, एक संतान हो लेकिन किस प्रकार होनी चाहिए, चंद्रमा के भांति, और इतनी संख्या में तारे हैं उससे हमें कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन चंद्रमा पूरा सब कुछ प्रकाशमान करता है। लेकिन अगर कोई सोचे नहीं जी नहीं, संख्या बढ़ानी, बढ़ाओ संख्या, पशु भांति उसका कोई मतलब ही नहीं। जैसे महाभारत में देखते हैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन सारे के सारे अधर्मी निकम है, और सबको मरना पड़ा। इधर कुंती महाराज के पास 5 पुत्र थे, लेकिन सभी के सभी तारों के समान धर्मी, धर्म का पालन करते हैं। घर में संतान अगर अच्छी है या संस्कारित है, उसे अलग शब्द बोलते हैं, पूत सपूत क्यों तो धन संचय, और पूत कपूत तो धन संचय। हम लोग अपना जीवन तो धन संचय में लगा देते हैं, इसलिए हम कहते हैं गुरु जी टाइम नहीं माला लगने का, कथा में आने का, क्योंकि हम लोग संचय में समय लगा रहे हैं। और किसके लिए संचय करते हैं, हाँ जी,
बच्चों के,
जो कि ऊपर की अथॉरिटीज भगवान और उनके बनाए गए सिस्टम के द्वारा, जिन लोगों की इच्छाएं थी, जिन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे, भगवान ऊपर से ढूंढ रहे होते हैं, अच्छा अभी ये है, इसको किस तरह की सुविधाएं दो, इस आदमी यहाँ से उठाओ, इसको इस परिवार में भेज दो, इसको उठाओ यहाँ से इस परिवार में भेज दो, है ना, इस तरह आत्मा को शिफ्ट करते हैं। तो कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, कब तक, जब तक कि वो किसी और परिवार में सुख हो गए, लेकिन अचानक जिस परिवार में उसकी योजनाओं के अनुसार, कर्म के अनुसार, पुण्य के अनुसार या पाप के अनुसार जो उसकी योग्यता बनती है, जैसे उसकी इच्छाएं बनती हैं, तो ऊपर के अथॉरिटीज उस तरह का परिवार देखकर उसको वहां भेज देते हैं। और हम लोग धन संचय किसके लिए कर रहे थे, परिवार के लिए, संतानों के लिए, तो सब कुछ एज इट इज देखे जाना पड़ता, कमाया किसी ने एंजॉय कर रहे, और एंजॉय का मतलब यहाँ पर बहुत भी मतलब है, एंजॉय का मतलब अगर संस्कारित नहीं है तो समझ लीजिए केवल सिंफुल एक्टिविटीज, और सिंफुल एक्टिविटीज का मतलब क्या है, अंत क्या होगा इसका, बहुत ही दुष्परिणाम होगा, घर की तैयारी, पशु इत्यादि होने जाने। तो इस प्रकार कहते हैं पूत कपूत तो धन संचय, तो अगर कपूत निकला तो अगर आपने धन को दे दिया तो वो आपको और आपकी 21 पीढ़ियों को खा जाएगा। और पूत सपूत, और अगर वो इंटेलिजेंट संस्कारित है तो वो अपने आप कर लेगा। जैसे इस देश में ऐसा नहीं कि केवल परिवार की संपत्ति से ही सारे लोग धन्यवाद हैं एवं परंपरा प्राप्तम धर्म क्योंकि धर्म जो है परंपरा से प्राप्त है नहीं गांव में किसान के बच्चे मेहनत करते हुए वहां पढ़कर फिर दिल्ली में आकर जॉब करना शुरू करते हैं और फिर कुछ बिजनेस शुरू कर देते हैं कुछ लोग अचानक जो यहाँ पर परंपरागत धन प्राप्त बच्चे होते हैं या उससे भी अधिक जो है धनवान मिल जाते हैं ऐसा नहीं फुल स्टॉप लग गया हम देखते हैं आप में से भी ऐसे होंगे जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन आज सब कुछ है कि नहीं और कर्म का ऐसा प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर संस्कार और प्रारब्ध उसको वहीं तक पहुंचा देंगे जो उसकी किस्मत में है चाहे फिर वो अनपढ़ ही क्यों ना हो हमने देखा है कि कई लोग अपना नाम तक लिखना नहीं जानते लेकिन वो कई कई कंपनियों के मालिक हैं इसका मतलब क्या खाली एजुकेशन मैटर नहीं करती उसको धनी बनने और जितने लोग खूब मेहनत करके अच्छी डिग्री देते हैं वो यहाँ जॉब करते हैं है कि नहीं तो एक्सटर्नल फीचर्स हमारे कर्म के जो प्रारब्ध है उसके अकॉर्डिंग उस पे वो नहीं करते जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसको मिलेगा और कुछ जो स्वतंत्रता होती है हमारे पास हम उसका भी सदुपयोग दुरुपयोग कर सकते हैं तो उसके आधार पर हम लोग केवल इस जीवन में भी कार्य करते हैं जो हमें उसका निश्चय भोगना पड़ता है तो बता रहे हैं जैसे इस प्रसंग में शंकर में कह रहे हैं कि ये तो क्या लिखा गया चंदन के जंगल में कटीला पेड़ बनकर आया है वास्तव में अगर कोई बहुत सुंदर जंगल हो चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि बहुत सुंदर जंगल हो लेकिन उसमें एक भी अगर शुष्क वृक्ष है ना मतलब सूखा पेड़ और जब हवाएं तेज चलती है तो उसके घर्षण से उसमें आग लग जाती है तो वो पेड़ खाली खुद नहीं जलता पूरे जंगल को जला देता राख कर देता कहते इसी प्रकार अगर हमारे कुल में सब ठीक है सब अच्छा चल रहा है सब बढ़िया है लेकिन एक भी ऐसा शुष्क वृक्ष ऐसा वृक्ष आ गया ऐसा निकम्मा व्यक्ति आ गया कपूत आ गया तो क्या करेगा वो पूरे के पूरे कुल को उसका नाम का पट्टा धार कर देगा पूरे कुल को चला देगा और इसी का उल्टा है कई बार जंगल में बहुत से वृक्ष हैं लेकिन एक वृक्ष ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत सुंदर सुगंध फूलों से मतलब सुगंध होती है तो पूरे के पूरे वन को क्या करता है सुगंधित कर देता है तो इस वृक्ष की तुलना की जा रही है उस सुपुत्र से जो प्रहलाद जैसा जहां अच्छे संस्कार प्राप्त करने का प्रयास कर रहा तो पूरे कुल को उजागर कर पर भगवान से कह रहे हैं कि जिस कुल में प्रहलाद महाराज जैसा संतान उत्पन्न हो जाती है उसकी 21 पीढ़ियां तक जाती है इसलिए हम लोगों को चाहिए यहाँ पर हिरण्यकश्यप के जीवन से चीज और देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार उसने जो है अपने पुत्र को 5 वर्ष की आयु में भेजा था तो अभी चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि लाले तो पंचवर्षन कि बच्चों को पालने की विधि है 5 वर्ष तक उसे क्या करना चाहिए उसका लालन पोषण करना चाहिए प्यार प्यार से फिर कहते हैं 10 वर्ष उसको ताड़ना देनी चाहिए कब तक 10 वर्ष तक उसको डांट होनी चाहिए जब वो गलत काम करे फिर कहते हैं प्राप्ति तो 16 वर्षम अगर 16 साल का हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए पुत्रम आचरित मित्रवत आचरण से उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए लेकिन हमारे को तो बचपन से ही तो इस प्रकार इस विधि से चलते हैं तो हम लोग अपने संतान को ठीक प्रकार से सही ढंग से संस्कारित कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस प्रकार कौमारा आश्रित प्रज्ञ बोला गया कि 5 वर्ष की आयु से बच्चों को अच्छे संस्कार देने की बात करनी चाहिए शुरुआत करनी चाहिए ऐसे शुरुआत कर कायातों ने नारद मुनि का से संदर्भ से कथा सुनी तो माता के गर्भ से ही प्रहलाद ने सब कुछ सीख लिया तो सही आयु वास्तव में कौन सी है गर्भ तो तो अगर गर्भवती स्त्री इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती, नहीं नहीं पुरानी बातें हैं, टाइम क्यों वेस्ट करें, और टेलीविजन देखकर या इंटरनेट पर वो सर्च कर कर कि भाई प्रेगनेंट को क्या करना चाहिए, नाना प्रकार के एक्सरसाइज सीख लें, खाने पीने की चीजें सीख लें, अपना टाइम इसी वेस्ट कर दे, तो फिर जब संतान बाहर निकलेगी तो कुछ ऐसी हुई। इसलिए शास्त्रों में इतना सुंदर प्रसंग है, जैसे कि अभिमन्यु भी थे, उन्होंने भी जो है पिता और माता की वार्तालाप से अंदर ही सब कुछ ग्रहण कर लिया, और इस प्रकार जब बाहर आए तो उसका ज्ञान पूरा था। हम देखते हैं जो मंदिर से भक्त छोड़ रहे हैं, जो फूल अगर इस प्रकार कर रहे हैं कि जब माता गर्भवती होती है तो श्रीमद् भागवतम का, भगवद गीता का अध्ययन, कृष्णा को का अध्ययन, भगवान के नामों का जप बढ़ा देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसका प्रभाव क्या होता है कि जब संतान आती है तो बचपन से ही वो छोटे क्योंकि कीर्तन सुना है उसने, तो जब बच्चा बाहर होता है ना तो जब रो रहा होता है तो उसके सामने हरे कृष्णा बोलते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। ऐसे महाप्रभु के समय भी होता था, हमें बताते हैं लोग, और क्योंकि कीर्तन इतना सुन लिया उसने तो उसको केवल कीर्तन ही अच्छा लगता है, और इस प्रकार जो है उसकी चेतना बचपन से, और फिर माता पिता को घर में देखता है कि क्या क्या है, सुबह से शाम तक सबको देखता है, क्योंकि बच्चे का पहला स्कूल घर होता है ना, वो देखता है पिता कैसे परेशान है धन की वजह से, तो समझता हूँ धन से परेशान होना चाहिए, पिता क्यों खुश हैं क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, हम इस तरह खुश होना चाहिए, है ना, और क्या करते पैसे का, ध्यान उठाए मान उठाए ये किया ये सब करना चाहिए, और कितने घंटे टीवी लगा के बैठे, चौके पे रोना है, चौके पे हंसना है, छक्के पे हंसना है, आउट ऑफ रोना है, तो घर से पूरी ट्रेनिंग लेना है। अब आप उसको कहते बेटा जरा अपनी टांगे तो दबा दे, डंडा है मुझे आपने ट्रेनिंग दी भागने की, आपने मेरी टांगे दबा दी, तो फिर वो कहता है मेरे से नहीं होगा ऐसा कुछ, है ना। जैसे उस दिन मैं बता रहे फिल्म थी, उसमें बोलता है कि आज मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, तो दूसरा कहता है मेरे पास माँ है, कहते तो टेंशन तेरे पास है, मेरे पास थोड़ी है, उनको पाल लेंगे फिर सेवा करेंगे, टेंशन तेरे पास, टेंशन लग गई, वो खुश था उस समय, वो कहता मेरे पास माँ है, अभी कोई बोले मेरे पास माँ है कहते अच्छा है, वाइफ कहते बहुत अच्छे में कहते तो इधर क्या। तो भक्त को कुछ अलग, हम लोग उसको सेंस से जानते हैं, कहते हैं मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ भी है, मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, मेरे पास और क्या क्या होता है, गाड़ी भी है, मकान सब है मेरे पास, लेकिन फिर भी एक चीज नहीं है, क्या नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो वो मिलती है भगवद्गीता भागवतम इन ग्रंथों में। तो जब हम लोग इन शास्त्रों के द्वारा बताया गया मार्गदर्शन, उसका मार्गदर्शन करेंगे, जो मार्गदर्शन दिया गया उस पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से ये इतना सुंदर जीवन है कि व्यक्ति जब जो शुरू करता है तभी से उसके जीवन में आने लग जाता है, तभी से उस सुख की अनुभूति, उस संतुष्टि की अनुभूति करता है, वो फिर घरों घड़ों की तरह मतलब इस तरह भागता नहीं उन सब चीजों के लिए जिसके पीछे दूसरा समाज भाग रहा है, वो ऐसे ही वातावरण में रहना पसंद करेगा जहां की उसको सुख मिले, जहां पर उसको संतुष्टि हो, जहां पर वो भगवत भक्ति कर सके। तो इस प्रकार इस स्कूल में तो गलत बोल रहे हैं और हमारे तो असुर है, तो इसलिए बोल रहे हैं देखो कहां चंदन के जंगल में ये कटीली झाड़ उग गई हमारे घर में, जबकि बोलना क्या चाहिए था, एक भक्त क्या बोलेगा कि कटीली झाड़ों में जो है एक चंदन का पेड़ उग गया है, चूंकि पूरे वन को उस असुर कुल को क्या करेगा सुगंधित कर देगा। देखो ना वो हिरण्यकशिपु भी भगवान के धाम उसकी बात करें 21 पीढ़ी तक लेते और जितने पेड़ पेड़ थे सब झाड़ियां टहनी सब लेकर धाम, तो ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रहलाद महाराज के जीवन से सीखे कि हम लोगों को अपने को इतना जो है संस्कारित करना है या शास्त्र के हिसाब से चलना, ताकि हम लोग जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सके। हो सकता है किसी को माता पिता ने ना समझाया बेटा तुम्हारा लक्ष्य ये है, कोई बात नहीं, ज्यादातर होता ही ऐसा है, जिसको जब समझ आ जाए तब शुरू कर देता है, माता पिता को केवल लेट समझ आता है या कई बार माता पिता को पहले समझ आया था, अगर वो क्लासेस में आना शुरू हुए तो बच्चों को बाद में समझाते हैं। तो लेकिन होता यही है, जब बच्चे समझते हैं तो कहते मुझे माता पिता घर में नहीं मानते, और जब माता पिता समझ जाते हैं वो कहते मुझे बच्चे घर में नहीं मानते। तो समस्या क्या है कि जब तक वो आना शुरू नहीं कर रहे, समझना शुरू नहीं कर रहे। कई बार हमने देखा है कि माता पिता भक्त हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं साधना के साथ, अच्छा भी लग रहा है, ठीक है, समझ भी आ गई चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बच्चों को जोड़ना नहीं चाहते। उसका कारण क्या है? कई कारण है। उसका कारण यह है कि एक तो उनकी बात ही नहीं मानते, लेट हो गए। अब पौधे को तो आप डंडी लगा के सीधा कर सकते हो, अब जो पेड़ बन गए उसको सीधा कैसे करो, है कि नहीं? गीले बांस को तो फिर भी मोड़ा जा सकता है, सूखे बांस को तोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी कृष्ण भावना भगत आंदोलन में इस प्रकार की बाहरी एक्सटर्नल पोजीशंस पर ध्यान नहीं दिया। भक्ति तो किसी भी आयु में, किसी भी समय, किसी भी काल में आसानी से की जा सकती है। तो ये एग्जाम्पल हर जगह नहीं चलता। तो कोई व्यक्ति कहीं पर भी जुड़े, उसे चाहिए कि वो शुरू हो जाए बस और स्पीड बढ़ा ले। तो हम बता रहे थे कि जिन परिवारों में माता पिता भक्त बन गए तो उनको लगता है अरे माला सोना माला और ये सब, तो कई बार बच्चों को नहीं डालते, इसलिए नहीं डालते कि ठीक है जो हमने कमाया धमाया फिर वो खाएगा कौन, भाई हमारी तो उम्र होगी हमें करने दो, प्रभु जी बच्चों को क्यों आप परेशान करो, उनको जीने थोड़ा अभी आनंद लेने दो, मजे लेने दो, उसको इसको मजे की उम्र है, ऐसा बोलते कई बार, मजे की उम्र है मतलब अभी तो पाप करने की उम्र है प्रभु जी, मजे का मतलब पाप हो गया जी, खाओ पियो ऐश करो, खाएगा क्या वो सरसों का साग और मक्की की रोटी खाएगा, परांठे खाएगा घर पर नहीं, तो क्या खाएगा? वो ऐसी चीज खाएगा जो हरे के प्लेट में नहीं है, जिस चीज के लिए मना किया जाता है। कई बार तो हमने देखा चलते जो चीज प्लेट पर रखने के बाद हिल रही होगी,
हिरण्यकशिपु
तो लोगों को लगाया था, हिरण्यकशिपु ये खुद बन जाते हैं, हम भी करते थे तो ये इस कारण से है क्योंकि हर व्यक्ति सन्मय नहीं आ रहा भक्तों के, हर व्यक्ति के उद्देश्य अलग है। जिस दिन सबको पता चल गया कि हम लोग जो है शरीर नहीं मान पाए हैं और भगवत गीता भागवतों के आधार पर जीवन को जीना, सुखपूर्वक आनंद रूप जीने की यही कला है और शांति से जिया जा सकता है, बहुत आसानी से जिया जा सकता है और इसके लाभ इतने हैं कि पूछो, तब जाके सब लोग भक्ति कर पाएंगे, तब जाके फिर वो जो चंदन का वृक्ष है वो सबको सारी कटी हुई झाड़ी को क्या बना देगा, चंदन ही बना देगा। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसलिए महाप्रभु ने कहा कि मेरे पास दो हाथ हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि कृष्ण प्रेम सबको बांटूं। तो आप सब लोग गुरु बनिए, आप सब लोग जन्म को सार्थक करिए और दूसरों का उपकार कीजिए और अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ के द्वारा यही कार्य हो रहा है, क्या कि जन्म को सार्थक किया जा रहा है और दूसरों के ऊपर उपकार किया जा रहा है। और ये परोपकार किस रूप में किया जा रहा है, इस प्रकार मंदिर में कथाओं के द्वारा किया जा रहा है। गीता मैराथन चल रहा है तो एक एक भगवत गीता को हर घर में दिया जा रहा है, हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि पूरे विश्व को जो है गीता भगवत गीता से भर दिया जाए, ताकि कोई व्यक्ति दुखी तो हर कोई है, कभी ना कभी तो खोलेगा और जब पढ़ेगा जिस किताब में ये लिखा कि तुम्हारा असली पिता कौन है और हमेशा सुखी कैसे रहा जा सकता है, जन्म मरण के चक्कर से कैसे बचना है, तो फिर वो व्यक्ति भाग बन जाए। तो इसलिए भगवत गीता मैराथन और कथाओं के श्रवण नियमित रूप से करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, ताकि हम लोग भी प्रहलाद जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम भी चल सकें और हम भी अपने जीवन को सार्थक कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रश्न हो तो अलग साहब पूछ लें। धन्यवाद। श्री गोपाल जी।